Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor Manoj Pathak.
नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी शुक्रिया, थैंक यू।
आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी।
थैंक यू मनोज। बेंचमार्क इंडिसेस एंड हायर अहेड ऑफ फेड आउटकम, सेंसेक्स सेटल्स 90 पॉइंट्स अप, निफ्टी क्लोजेस अबव 21,800। India has emerged as world's third largest startup ecosystem with over 1.25 lakh startups and 110 unicorns, says Prime Minister Narendra Modi. And country's gross direct tax collection registers 18.74% growth during the current financial year.
Fed Reserve ki baithak ke natije ki ghoshna se pehle gharelu share bazar chauhe, Sensex 90 ank tezi ke saath hua band, Nifty 21,800 ke upar hua darj. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1,25,000 स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा, और चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.74% बढ़ा। घरेलू शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ। अंत में प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 90 अंक यानी 0.12% बढ़त के साथ 72,102 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 22 अंक यानी 0.1% ऊपर आकर 21,839 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन थोड़ा सा अलग अलग दिखा है। एक ओर बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.05% की तेजी आई, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 0.15% घाटे के साथ बंद हुआ।
बेंचमार्क इंडिसेस एंडेड विद मार्जिनल गेन्स इन अ वोलेटाइल सेशन टुडे अमिड अ लार्जली फर्म ट्रेंड इन ग्लोबल इक्विटीज। द 30 शेयर सेंसेक्स रोज 90 पॉइंट्स और 0.12% टू सेटल एट 72,102 एंड द एनएसई निफ्टी गेन्ड 22 पॉइंट्स और 0.1% टू क्लोज एट 21,839। Among Sensex firms, Maruti jumped 3%, Power Grid and Nestle India rose over 2% each. On the other hand, Tata Steel declined 2%, Tata Motors fell 1.7% and Axis Bank slipped 1.5%. In the broader market, the BSE mid-cap index ended 0.5% higher. However, the small-cap index slipped by 0.15%. In the sectoral indices at the BSE, oil and gas sector and energy sector surged 1.10% each, power sector rose 0.9%. While the metal index plunged 0.90%, commodities sector slipped 0.65% and the financial services sector fell 0.4%.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 83.17 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 104.13 पर कारोबार कर रहा था।
डॉक्टर शर्मा, यू नो लुकिंग एट द वे द मार्केट्स वर यू नो बिहेव टुडे, वी सॉ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेड यू नो देयर वाज समथिंग लाइक अ 728 पॉइंट इंट्राडे and ultimately it closed above 90 points higher. How do you look at the way the markets behave today and the movement of the Sensex and the Nifty?
Yes, Anubha, markets are significantly volatile since the last many days because there are some uncertainties at the global level, like US, the policy of the US for cutting the interest rate is not clear yet, because people were expecting, investors were expecting that the US going to reverse the cycle of the rate cutting, but that has not happened during the last meet, and in the next meet there are expectations, but still uncertainty. Japan has also increased the interest rate from minus to 0%. That is also a great, I think, implication for the many emerging markets. Like the interest rate scenario always is important for attracting the capital flows. So all these developments are impacting the market scenario, and at the domestic front, because we are in the close of the financial year of 23-24, sometimes people sell their stocks which are in the loss making trajectory to offset their losses from the gains, from the capital gains from other stocks. So this churning happens at the end of the financial year. So that's why I think markets are volatile and will remain volatile till the situation becomes clear from the global perspective and people are able to settle their all the stocks and churning their accounts, stocks according to their respective portfolios.
डॉक्टर शर्मा, चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और चुनाव जब कभी होता है तो उसके बाद बाजार पर इस बार के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है आपको? विभिन्न 7 चरणों में चुनाव होने हैं, तो इस दौरान यानी कहने लगभग 3 महीने के दौरान बाजार का व्यवहार आपको कैसा दिख रहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को यदि दरकिनार हम कर दें तो?
देखिए मनोज जी, चुनाव में क्या होता है कि बहुत सारी न्यूज आती है और मैनिफेस्टोज आते हैं पार्टीज के, और बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बनती हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस के शायद ये पार्टी जीत जाए या फिर रूलिंग पार्टी है ये जीत जाए या फिर उनके कैसी स्थिति है, उसके मद्देनजर मार्केट के ऊपर काफी असर देखने को मिलता है। तो जनरली मार्केट जो है इलेक्शन के ईयर्स में बहुत ही वॉलेटाइल रहती है, क्योंकि कुछ भी एक क्लियर कट डायरेक्शन मार्केट के पास नहीं होती, कुछ भी सर्टेन नहीं होता, जिस वजह से मार्केट वॉलेटाइल ट्रैजेक्टरी में रहती है और कई बार बहुत ही सिग्निफिकेंटली वॉलेटाइल होती है, जिसमें ये रहता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है कई बार वो काफी इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे सिनेरियो में रिटेलर्स को अगर वो इन्वेस्टर है मार्केट में तो बने रहना चाहिए, अदरवाइज उनको मतलब कोई ऐसी जो स्पेकुलेशन है उसके बेसिस के ऊपर कोई ऐसी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो मार्केट जो है आने वाले 2 महीने में काफी वॉलेटाइल रह सकती है, और साथ ही जो ग्लोबल सिनेरियो है वो भी बहुत सपोर्टिव है इस वॉलेटिलिटी को, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो क्लियर नहीं है कि आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट डायरेक्शन क्या होगी, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या यूएस आने वाली जो मॉनेटरी उसके फेड मीट है जो उसमें रेट कट करेगा, कुछ डायरेक्शन देगा या नहीं देगा, ये तय होगा कि आगे आने वाले कुछ जो क्वार्टर्स हैं उसमें इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या रहेगा। तो इस अनसर्टेनिटी के साथ ही मार्केट को कई बार कोई छोटी मोटी कोई गुड न्यूज मिलती है तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड लेती है, अदरवाइज मार्केट फिर वापस उसी लेवल पे आ जाते हैं या थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। तो कुल मिला के जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है जो अभी हम देख रहे हैं निफ्टी में 22,000 प्लस माइनस के आसपास जो बनी हुई है पिछले काफी ट्रेडिंग सेशन से, वो हो सकता है आने वाले टाइम में और कंटिन्यू रहे। अगर कोई करेक्शन भी आते हैं तो वापस मार्केट रिकवर करके इसी लेवल पे आ जाती है, ये पिछले काफी सेशंस में ऐसा देखा गया है।
Where today we are discussing the various economic and financial business issues with economic analyst, senior economic analyst Dr. S.P. Sharma. Dr. Sharma, you know, you've been mentioning the U.S. Fed, and of course the U.S. Fed meeting is right now on. It began yesterday and today is the last day. We'll know what happens at the end of that meeting once the U.S. Fed Chairman Jerome Powell comes out and speaks. But before that, if I come back to the Indian markets, in the broader market, we saw today that the BSE mid-cap index ended 0.05% higher, but the small-cap index slipped by 0.15%. Whatever is happening, you know, apart from the large caps, the mid-cap and small-cap, do you think that, you know, the comments that were made by the SEBI chairman a few days ago regarding the pockets of froth in the market, that's still affecting, that's still roiling the small and mid-cap market?
Yes, that is also true, because there were indications that some kind of bubble or some kind of extra buying is happening in the mid-cap and valuations are significant. So people at this juncture, because the financial year also closing, so that's why they are booking their profits also. So that's why the mid-cap space is significantly volatile and taking a correction. Though the markets recovered from the lows, but the mid-cap still in the minus trajectory. So the people sometimes churn their portfolio, sometimes they book their profits in the mid cap stocks and then again enter in the blue chips and the large caps so that their investments are long lasting and they are able to gain from the growth in the large stocks. If the expectations of their mid-cap stocks are also at their levels, they are expecting some 50, 30 or 40% returns, and that is also fulfilled and they also book profit. So many things happen in this piece because financial year is also closing and some news from SEBI and some profit booking and some global market conditions, all these factors are significantly impacting the space of the markets.
डॉक्टर शर्मा, यदि हम आंकड़ों को देखें तो जो हमारी अर्थव्यवस्था के मैक्रो फैक्टर्स हैं उन सबों में हम उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं, चाहे वो जीएसटी संग्रह हो या प्रत्यक्ष कर संग्रह हो। इसके साथ साथ अन्य कारक भी भारत के भी पक्ष में जा रहे हैं, तो ऐसे में वैश्विक स्थितियों को देखते हुए अपना शेयर बाजार किस दिशा में आगे जाता दिख रहा, भले ही अमरीका की नीति, फेडरल रिजर्व की नीति, ब्याज दर को लेकर चाहे जिस दिशा में जाए, कुल मिलाकर भारत उभरता हुआ ठिकाना है, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं है। तो अपना शेयर बाजार और हमारे शेयर बाजार में कौन से क्षेत्र इस पूरे वर्ष के लिए, यदि हम देखे चले, यदि आप नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेके चले तो दिसंबर तक में कौन सा क्षेत्र और अपना बाजार कहां जाता दिख रहा?
जी बिल्कुल मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमी है, हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, दोज पैरामीटर्स आर वेरी स्ट्रांग। हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसी अवधि आती है जहां पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी या न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी जिसको मैं कहूंगा वो रहती है, उसमें फंडामेंटल्स में कोई फर्क नहीं होता। उसमें कई बार न्यूज ऐसी आनी शुरू हो जाती है जो थोड़ा सा मार्केट सिनेरियो को, सेंटीमेंट्स को जो इम्पैक्ट करती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल न्यूज है कि जापान ने इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज कर दिया, उधर यूएस से पॉलिसी क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी है कि फेड कट करेगा या नहीं करेगा, और उधर से इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी। इंडिया में इन्फ्लेशन सिनेरियो भले ही बहुत डिसलिरेट हो गया है, बट स्टिल कि आने वाले टाइम में आरबीआई का क्या स्टांस होगा वो एक मैटर करेगा। तो कुल मिलाकर जो आपका प्रश्न है कि आने वाले टाइम में इन सब चीजों के मद्देनजर कैसा रहेगा सिनेरियो, मैं ये कहूंगा कि सिनेरियो बहुत पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज इंडिया की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। खाली जीडीपी नंबर्स नहीं, अगर हम जैसे आपने फरमाया कि जीएसटी कलेक्शन हो या फिर डायरेक्ट टैक्सेस जो आज ही जिसके आंकड़े हमने देखे हैं कि 20% के आसपास ग्रो कर रहे हैं वाईओवाई अभी तक का जो 17 अप्रैल तक मार्च तक का जो डेटा है, और एडवांस टैक्सेस भी काफी इंटैक्ट है, वो भी 20% से ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो से पता चलता है कि आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी है, जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, जो बिजनेस परफॉर्मेंसेस है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी। और नॉट ओनली द नंबर्स ऑफ द डोमेस्टिक फ्रंट बट एट द इंटरनेशनल ऑल्सो। अगर हम देखें आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक गए तो हमारी ग्रोथ जो है वो सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हम अगर मेजर इकोनॉमीज में देखें तो हम सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और अगले वित्त वर्ष में 24-25 में हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो उसके बाद 2030 तक हम $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट में अभी इन इसी सिनेरियो में जो न्यू हाइज है वो बनाने की प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। वो दिसंबर तक का अगर हम सिनेरियो देखें तो मेरे को लगता है कि मार्केट इस लेवल से आगे न्यू हाइज बनाएंगे आने वाले दिनों में, जब ये अनसर्टेनिटी जो है समाप्त हो जाएगी।
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज कुल मिलाकर लिवाली की गई है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 1.26% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर हांगकांग के हिंगसिंग में 0.08% की तेजी आई। सिंगापुर का स्ट्रीट टाइप्स इंडेक्स 0.12% लाभ रहा, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.55% की वृद्धि हुई। जापान की ओर चले तो वहां आज कारोबार बंद रहा है। यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिलाजुला रुख था। फ्रांस का कैक 40 0.81% नुकसान के साथ चल रहा था, लंदन के फुटसी 100 में 0.16% की कमी थी। उधर जर्मनी का डेक्स 0.05% लाभ के साथ चल रहा था।
Moving on to the US market, the three major US indices closed higher in the last trading session as shares of leading semiconductor company Nvidia rebounded from initial declines. Investors shifted their focus to the outcome of the Federal Reserve's policy meeting, anticipating insights into interest rate strategies. At the closing bell yesterday, the Dow Jones Industrial Average rose 0.83%, the S&P 500 gained 0.56%, and the Nasdaq Composite jumped 0.39%. Dr. Sharma, as we were discussing earlier on in the program, and you mentioned about the U.S. Fed Reserve, you know, their stance on the rate cut policy, and you also mentioned that the U.S. Fed actually is right now in a meeting which is going to end later today. It is a two-day meeting. But analysts are not expecting any kind of, the US, the Fed to announce the beginning of a rate cut cycle as yet. Because one, this thing, there's a couple of factors to that, that right now it's a resilient economy, a higher than expected rise in the annual consumer price inflation in February, and a stronger than expected jobs report are the key factors that the analysts are citing. So given the fact that the rate cut announcement may not happen at the end of the day, at the end of the session today, the commentary which is going to come out, what Jerome Powell, the US Fed chairman, is going to say is becomes very important. So what are your expectations from that commentary?
Yes, very true, because now the dollar index is also intact. The dollar index is at 103.69, so that is indicating that strength of the US economy is intact, and there may be some announcement that they are not going to cut the interest rate scenario, and they are not reversing the cycle, and in the coming times the interest rate scenario may remain intact for a few months also. So I think because inflation trajectory of the February, as you mentioned, is not favorable to reverse the interest rate cycle. And second thing is that Japan has increased the interest rate. So all these developments are indicating that interest rate direction will be higher or remain same in the coming times. So that's why markets are facing significant volatility. And in the coming times, if the interest rates remain same and they are not changing the stance, but the indication about the coming months, like their stance, like their discussion, that they are going to reverse the cycle in future, their direction will matter for the financial markets in the coming days.
So if the markets have already factored in the fact that the US Fed is not going to announce a rate cut, cycle, what are the factors that the market would be now looking at? What are the things that the market would be looking at going forward? Not just the US markets, the markets world over, because markets the world over mostly take a cue from the US market.
Yes. The factors like the crude oil prices. If the crude oil prices are going up, then that may be detriment for the markets, and markets may remain volatile in the coming times. And the second, the stance of the US Fed is they are indicating that in the next few months or the next month or after a few months they are going to reverse the cycle. That will also matter for the markets, and markets may recover significantly from the recent lows. So all these factors from the global perspective will matter. At the domestic front, as we have already inflation trajectory coming down, and the RBI, next meeting of the RBI will be shaping the scenario, as there are no expectations that the RBI is going to cut the rate, but positive stance like the status quo will be positive for the markets, as fundamentals and the economic indicators are moving in the right tandem and going up. So, but the people are expecting that in the coming times, after the inflation is stabilizing at around 4.5% for a few months, then RBI can took the easier stance and may cut the policy rates in the coming quarters.
चालू वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.74% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 22,27,000 करोड़ रुपए का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ। ये वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि के 18,75,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, प्रतिभूति लेन देन कर और अन्य कर शामिल हैं। निगम कर संग्रह 10,98,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रतिभूति लेन देन कर सहित व्यक्तिगत कर संग्रह 11,25,000 करोड़ रुपए से अधिक था। अग्रिम कर संग्रह 9,11,000 करोड़ रुपए से अधिक था। वित्त वर्ष 2023-24 में 3,36,808 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.74% अधिक है। कुल मिलाकर इसे हम एक उल्लेखनीय उपलब्धि माने, डॉक्टर शर्मा?
जी बिल्कुल, क्योंकि जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत ही एक मेजर इंडिकेशन है जो कि सरकार के फिस्कल रोडमैप को सपोर्ट करता है। जैसे सरकार ने अपना फिस्कल रोडमैप जो रखा है कि 4.5% होना चाहिए आने वाले टाइम में, अगले वित्त वर्ष में, इससे अगले वित्त वर्ष में, तो वो इंटैक्ट है कि जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो बहुत अच्छे से अपने नंबर जो है वो बहुत अच्छे से आ रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि लगभग 20% से हमारा जो नेट डेट टैक्सेस है वो ग्रो कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, जो सारा मार्क सरकार की डेटा है। और उसके बाद जो हमारे ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन है, वो 19% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। और जिसमें जो रिफंड हैं वो भी बहुत इंटैक्ट है, रिफंड भी इंक्रीज हुए हैं, लगभग वही 12.5% के आसपास रिफंड ग्रो कर रहे हैं। और एडवांस टैक्स कलेक्शन जो है वो भी इंटैक्ट है, लगभग कोई 22% से वो ग्रो कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो पिक्चर है वो बहुत ही रोबस्ट है। और दूसरी तरफ अगर हम जीएसटी नंबर्स देखें, जीएसटी में बहुत ही रोबस्ट सिनेरियो है, जीएसटी कलेक्शन जो है निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसमें हमने देखा है कि जो ग्रोथ है जीएसटी का, जो वाईओवाई ग्रोथ है वो एकदम से इंटैक्ट है। उसमें अगर देखा जाए तो 12.5% का अभी तक, अगर अप्रैल से फरवरी तक का हम डेटा देखें तो 12.5% का ग्रोथ आया है जीएसटी नंबर्स में भी। और लगभग कोई अभी तक 18.4 लाख करोड़ का जो है वो हो चुका है अभी तक कलेक्शन, जो पिछले साल के मुकाबले में काफी सिग्निफिकेंटली हायर है। पिछले साल इसी समय के दौरान अप्रैल टू फरवरी तक जो था 60.5 लाख करोड़ का जो था वो कलेक्शन हुए थे, जो कि अभी तक लगभग 12% से हम ग्रो कर रहे हैं वाईओवाई जीएसटी कलेक्शन में। तो ये सारा पिक्चर जो है जो टैक्स कलेक्शन का है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस है या इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो बहुत ही रोबस्ट है। और आने वाले टाइम में जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए एक बहुत ही ब्राइट पिक्चर हमें प्रोवाइड करता है।
Moving on, Prime Minister Narendra Modi has said that India has emerged as the world's third largest startup ecosystem, with over 1.25 lakh startups and 110 unicorns. Addressing the Startup Mahakumbh at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Modi said India's startup ecosystem is flourishing at an unprecedented pace, backed by the innovative spirit of country's youth power. He said in the last decade, India has seen as to how it has made strides in the IT and software sector, and now people are seeing the trend of innovation and startup culture in India. The Prime Minister asked the entrepreneurs to be vigilant about filing their patents quickly. He said startups have made a turnover of over 20,000 crore rupees over GE and Portal, which is a big achievement. Elaborating on space startups, the Prime Minister said that Indian startups are working in more than 50 areas in the space sector, including the launch of the space shuttle. The Prime Minister stated that startups launched on the policy platforms are reaching new heights today. Dr. Sharma here, I want to draw your attention to one particular thing that the Prime Minister said, which is he asked the entrepreneurs to be vigilant about filing their patents quickly. How important is that? Because most often than not, that is the area where maybe, you know, our entrepreneurs, our startups lack.
Yes, very true, Anubhati, because our startups are becoming major growth drivers and we are major strength of the Indian economy. They are employment creating ecosystem in India, I would say. And India is world's third largest startup system, as you already mentioned, and Asia's second largest. And South Asia's first largest startup ecosystem, with more than 1 lakh startups and over 100 unicorns, creating more than, more than 12 lakh jobs. So this system is very robust, and I would say recently, according to some reports in US, India's Asia's top 15 startup systems, India has presence of 5 in total Asia's top 15 startup ecosystem. So, great presence in Asia's startup ecosystem, as India's innovation and right. India's trajectory of startups is very strong, and that is indicated by the numbers, not at the domestic level, but also at the international level.
Moving on to commodities, oil prices edged lower today after hitting multi-month high in the previous session. As investors braced for the US Federal Reserve's interest rate policy announcement later in the day, in intraday trade, Brent crude was trading at $86.48 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $82.50 per barrel when reports last came in.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार किए जाने तक अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य बिना किसी खास उतार चढ़ाव के मामूली 34 रुपए बढ़त के साथ 65,617 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उधर मई अनुबंध वाली चांदी 134 रुपए घटकर 76,153 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। वैश्विक बाजार की ओर चले तो कमोडिटी एक्सचेंज में सोना नुकसान के साथ $2,177.90 प्रति औंस पर था, वहीं चांदी भी सुस्ती के साथ $25.02 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। यहाँ पर डॉक्टर शर्मा बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे कि बाजार में जो परिस्थितियां हैं उसमें सोना अब यहाँ से आगे किस दिशा में जाता दिख रहा है, बहुत संक्षेप में।
देखिए मनोज जी, सोने में चमक बनी रहेगी, ये थोड़ा बहुत जैसे डॉलर अभी थोड़ा स्ट्रांग हुआ है तो, और अभी यूएस का फेड पॉलिसी भी आगे अनाउंस होने वाला है तो उस वजह से थोड़ी सी सुस्ती कई बार इन कॉमोडिटीज में देखने को मिलती है। बट द लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी इज इंटैक्ट एंड गोल्ड विल बी शाइनिंग इन द कमिंग टाइम्स टू।
यानी श्रोताओं, कुल मिलाकर हमारे विशेषज्ञ का आकलन है कि सोने की चमक आने वाले दिनों में बढ़ती रह सकती है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं और डॉलर की स्थिति जा रही है उसमें सोना ऊपर ही आएगा, ऐसे आसार हैं। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
जी शुक्रिया मनोज जी, थैंक यू अनुभव जी, थैंक यू।
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark indices end higher ahead of the Fed outcome. Sensex settles 90 points up. Nifty closes above 21,800. India has emerged as world's third largest startup ecosystem with over 1.25 lakh startups and 110 unicorns, says Prime Minister Narendra Modi. And country's gross direct tax collection registers 18.74% growth during the current financial year. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar. Market and sales.